तो प्रभु जी साक्षात हमारे बीच में, ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो हम उनका स्वागत करेंगे जोरदार हरि बोल के द्वारा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और प्रार्थना करूँगा कि हमें भगवान के बारे में थोड़ा सा गाइड करें। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। गीता ही, गीता नहीं, गीता गीता ही भागवत में काल लिया। और खुलना है नहीं है, इसको और गया। हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा, जय राधा माधव जय कुंज राधा। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर लाभ जय गिरिवर धरी। जय सुदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी, जय हो। जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी, राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव
परमहंस परिराज गचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय दो श्लोक संख्या 24। सब लोग मेरे पीछे बोले श्लोक बोलेंगे ना मेरे पीछे सब लोग। अच्छिद्योयम् मदायोयम् अक्लेद्योषो शैवच नित्या सर्वगता स्थाणुन् अचलोयम् सनातनः अच्छिद्योयम् मदायोयम् अक्लेद्योषो शैव च नित्या सर्वगता स्थाणुन् अचलोयम् सनातनः अच्छेद्योयम् मदायोयम् अक्लेद्योषो शैव च नित्या सर्वगता स्थाणुन् अचलोयम् सनातनः। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए अच्छेद्य ना टूटने वाला अयम यह आत्मा अदाह्य ना जलाया जा सकने वाला अयम यह आत्मा अक्लेद्य अघुलनशील अशोष्य ना सुखाया जा सकने वाला एव निश्चय ही च तथा नित्यः शाश्वत सर्वगतः सर्वव्यापी स्थाणुः अपरिवर्तनीय अविकारी अचलः जड़ अयम् यह आत्मा सनातनः सदैव एक सा अब मेरे पीछे अनुवाद बोले, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो इस श्लोक का अनुवाद हमने पढ़ा और इस श्लोक में भगवान ने आत्मा के लिए 8 शब्दों का प्रयोग किया है। पहली पंक्ति में 4 शब्द हैं और दूसरी पंक्ति में भी 4 शब्द हैं, है ना। तो बहुत गहराई से भगवान इस आत्मा का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहला शब्द है आत्मा के लिए अच्छेद्य। अच्छेद्य का मतलब क्या है? जीव, शरीर के अंदर जो जीव है इसको काटा नहीं जा सकता। जैसे शरीर के टुकड़े किए जा सकते हैं, शरीर के कई टुकड़े भी किए जा सकते हैं, उस प्रकार से कोई सोचे कि जो शरीर के अंदर आत्मा है उसके भी टुकड़े हो सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अच्छेद्य। इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता। दूसरा शब्द है अदाह्य। अदाह्य का मतलब है जलाया नहीं जा सकता। तो किसी चीज को नष्ट करने का एक उपाय तो होता है कि आप टुकड़े टुकड़े कर दें, और दूसरा उपाय होता है जला दें। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको जलाया नहीं जा सकता। तीसरा शब्द है अक्लेद्य। अक्लेद्य का मतलब है घुलना। तो ये घुल नहीं सकता। अक्लेद्य का मतलब इसको घोला नहीं जा सकता। किसी चीज को नष्ट करने का एक उपाय ये भी है किसको जो है मतलब गल जाए। पानी में कुछ चीज़ें गल जाती हैं और कुछ चीज़ें पानी में नहीं गलती हैं, तो दूसरे प्रकार के द्रवों में गल जाती हैं। एसिड, एसिड में गल जाती। तो भगवान कह रहे हैं कि गल नहीं सकता। चौथा शब्द है अशोष्य। अशोष्य का मतलब सुखाया नहीं जा सकता। तो ये नष्ट करने का एक तरीका ये भी है। कुछ चीज़ें हैं जो सूख जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं, जैसे पानी है सूख जाता है, है ना। कपूर है वो भी उड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। तो आत्मा भी शायद कपूर की तरह हो कि हवा में सूख जाए। तो भगवान कह रहे हैं अशोच है, ये इस प्रकार से भी नष्ट नहीं हो सकता। तो 4 प्रकार से नष्ट करने की जो विधियां हैं उनके द्वारा आत्मा नष्ट नहीं हो सकता भगवान बता रहे हैं। इसलिए सभी शब्दों में शब्द आता है आ, और आ शब्द से निषेध होता है। पहला शब्द है अच्छेद्य, किसको काटा नहीं जा सकता है, अच्छेद्य। फिर आ, दूसरा आ क्या है अदाह्य, जलाया नहीं जा सकता। तीसरा आ क्या है अक्लेद्य, गलाया नहीं जा सकता। और चौथा आ क्या है अशोष्य, सुखाया नहीं जा सकता है, है ना। इसके बाद फिर 4 शब्द और भी हैं, है क्या है नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है। क्षमा करना, 4 नहीं है, कितने हैं 5। 5 शब्द हैं। तो पहली पंक्ति में 4 शब्द हैं और दूसरी पंक्ति में 5 शब्द हैं। नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है और सनातन है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि अणु आत्मा, आत्मा तो अणु है, आत्मा तो अणु है, अणु का मतलब बहुत छोटा है ना। इस शब्द में भी आया है अणु क्या है, स्थाणु। तो आत्मा क्या है, स्थाणु। स्थ का मतलब स्थित है, एक ही स्थान में स्थित है और अणु भी है। अचल, अचल का भी मतलब है जो चलायमान नहीं होता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में नहीं जाता है, कि आत्मा। स्थाणु का मतलब है स्थिर अणु है, और अचल का भी मतलब है जो चलता नहीं है, शरीर के अंदर चलता नहीं है। जैसे ड्राइवर गाड़ी में बैठता है तो उसकी एक सीट होती है, तो गाड़ी जब चलती है तो ड्राइवर थोड़ी ही चलता है, गाड़ी तो सीट में फिक्स, उसकी फिक्स सीट है। उसी प्रकार से आत्मा शरीर को चलाता है, लेकिन आत्मा शरीर के अंदर नहीं चलता है, इसलिए स्थाणु अचल इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। तो अंश तो भगवान का है, ये भगवान का अंश तो है, लेकिन ये भगवान का अंश इस प्रकार से नहीं है कि कभी ये टूटा हो भगवान से, आप समझ रहे। भगवान का अंश तो है ये आत्मा, लेकिन इस प्रकार अंश नहीं है कि पहले शायद जुड़ा हो भगवान के साथ, एक था और बाद में अलग हो गया हो, ऐसा कहते हैं ना जो मायावादी हैं, वो कहते हैं कि भगवान एक होते हैं पहले और फिर भगवान के ये जो है कई टुकड़े हो जाते हैं और ये सब जीवात्माएं हैं सब, और बाद में फिर सब मिलकर के एक भगवान बन जाते हैं। तो उनका तो ये भी कहना है कि शुरू में भगवान रहते हैं तो एक भगवान रहते हैं, कोई आत्मा नहीं होती है, एक भगवान है, और फिर भगवान ही टूट करके ये सब आत्माएं बन गए और भगवान अब भगवान नहीं रहे, और बाद में क्या होता है, सब आत्माएं जुड़ जाती हैं, एक हो जाती हैं, भगवान बन जाते हैं, एक भगवान हो जाते हैं, अब कोई आत्मा नहीं रहती। तो इस तरह का सिद्धांत गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या शब्द है, अच्छेद्य। अच्छेद्य का मतलब है कि ये ऐसा टूटने वाला नहीं है कि भगवान टूट गए और कई आत्माएं हो गई, और शास्त्र जी भी जुड़ने वाला भी नहीं कि दो आत्माएं मिलकर के एक आत्मा बन जाए, ये सब आत्मा मिलकर के एक भगवान बन गए। अगर ये टूटने वाला नहीं है तो जुड़ने वाला भी नहीं, इसलिए गीता में प्रारंभ में ही भगवान ने क्या कहा है, न ते वाहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा। ये शुरू में ही गीता का उपदेश है कि ना तो ऐसा कभी समय था जब मैं नहीं था या तू नहीं था या ये सब राजा लोग नहीं थे। तो आत्मा के रूप में हम सब लोग अलग अलग हैं और अलग अलग थे, अलग अलग रहेंगे, कभी दो आत्माएं मिलकर के एक नहीं बनी है और कई आत्माएं मिलकर के एक नहीं बनी है, या एक आत्मा टूट करके दो आत्माएं नहीं बनी है। ये जो सिद्धांत है ये सबसे जरूरी है और सबसे ये इसे कहेंगे कि मूल सिद्धांत, इस सबसे मौलिक जो बात है वो ये है इसलिए ये विचार कि मैं अपने को खो दूं, लोग सोचते हैं कि मैं अपने को खो दूं, हाँ अपने को नष्ट कर दूं, बहुत कष्ट मिलता है किसी व्यक्ति को और बहुत निराशा मिलती है किसी व्यक्ति को, हाँ और जिससे जो आशा करता है हाँ उसकी वही आशाएं टूटती हैं, तो वो क्या सोचता है कि मैं अपने को नष्ट कर दूं, क्योंकि मुझे इतना कष्ट मिल रहा है तो अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो कष्ट भी नहीं रहेगा। तो ये सिद्धांत गीता में सबसे पहले निरस्त किया गया है कि ये संभव नहीं है कि आप अपने को नष्ट कर सकें, नहीं तो लोग जो है सबसे अच्छा उपाय ही सोचते हैं कि हम भगवान की शरण ना लें, भगवान के सामने क्यों झुकें, भगवान के सामने क्यों नाक रखने, अगर अपने को ही नष्ट कर दें तो अच्छा है कि ये सब चक्करबाजी नहीं रहेगी। ये हरे कृष्णा वाले इतना जो है भगवान के आगे नाक रगड़ते हैं, हमें जो है नाक नहीं रगड़नी पड़ेगी, अपने को ही नष्ट कर दो तो ये संभव नहीं है, आप अपने को नष्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर नष्ट करने का प्रयास करते हैं अपने को तो आपको और दंड मिलेगा और कष्ट मिलेगा। आप अपने को नष्ट करने का प्रयास करते हैं तो आपको और दंड मिलता है, नष्ट तो आप हो नहीं सकते, आप किसी भी उपाय से अपने को नष्ट नहीं कर सकते, अच्छेद्य जम ये छेदन नहीं किया जा सकता है। तो लोग सोचते हैं गोली मार लें, हम अपने को गोली मार लें तो क्या हो गया, नष्ट हो जाएंगे, तो नष्ट नहीं कर सकते। अक्लेद्यम अदाय हो जम, आग लगा लें, हम अपने शरीर में आग लगा लें तो हम भी जल जाएंगे, नष्ट तो आप नहीं कर सकते। अच्छा अदाय हो यम अकले दियो, हाँ कुएं में कूद जाएं, पानी में कूद जाएं, समुद्र में कूद जाएं और अपने को गला दें, गल जाएं, तो नहीं हो सकता। हाँ और अशोष्य, अशोष्य का मतलब है कि खाएं पिए नहीं और अपने को सुखा दें, बिना खाए पिए अपने को सुखा दें तो नष्ट हो जाएंगे अशोष्य। तो किसी भी उपाय से आप जीव को नष्ट नहीं कर सकते, अपने आप को नष्ट नहीं कर सकते, और आपने नष्ट करने का प्रयास किया उसके लिए एक और दंड मिलेगा और सजा मिलेगी, है ना। तो जो अपने को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, उनको प्रेत का शरीर मिलता है, उसमें बहुत कष्ट है, बहुत असुविधा है, स्थूल शरीर नहीं मिलता है और प्रेत के शरीर में उसको बहुत असुविधा मिलती है। तो इसलिए एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, क्या उपाय है, कृष्ण की शरण में जाओ। आपको बहुत शर्म आ रही है लेकिन और कोई उपाय नहीं, लोगों को बहुत शर्म आती है क्योंकि अपने अहंकार को ठेस लगती है, हाँ मैं क्यों भगवान की शरण लूँ, क्यों माफ़ी मांगूँ, है ना। तो हमारा जो अहंकार है वो कहता है कि ये सबसे बेकार का काम है, भगवान की शरण लेना सबसे बेकार का काम है, हाँ क्योंकि इसमें हमें झुकना पड़ेगा, हाँ तो सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, लेकिन हाँ लेकिन भगवान ने कहा कि कट आप सकते नहीं, आप सिर कटाएंगे लेकिन जीवात्मा कट नहीं सकता है, तो आप कट नहीं सकते हैं, बल्कि आपको जो है और कटा हुआ सिर मिलेगा, प्रेत का शरीर मिलेगा, उसमें सिर कटा रहेगा आपका, उसी शरीर में आपको रहना पड़ेगा और असुविधा है, सिर के बिना आपको शरीर मिलेगा, आपने सिर कटाया तो बिना सिर का जो है प्रेत का शरीर मिलेगा
और कष्ट।
तो हर तरह से जो है कष्ट है, आप कहीं भी दिशा में भाग नहीं सकते हैं। केवल एकमात्र उपाय है कि शरण लीजिए, शरण लीजिए, है ना। और भगवान जो है इतने दयालु हैं कि शरण आप लेते हैं तो आपको वे जो है शर्मिंदा नहीं करते हैं, शर्मिंदा नहीं करते हैं। अगर आप शरण लेते हैं तो वे हंसी नहीं उड़ाते हैं, हैं कि अच्छा अब हाँ आए हो मेरी शरण में, है ना, और पैरों से जो है ठोकर मारे, ये नहीं है। भगवान भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, हैं कि आप अगर लज्जित होते हैं और शर्मिंदा होते हैं तो भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। तो ये उपाय बहुत सरल है, लेकिन भक्तों की संगति से हमें जो है इसकी सरलता का पता चलता है। और भक्तों की संगति नहीं होती है तो हमारा अहंकार जो है इस कार्य को सबसे ज़्यादा कठिन बताता है कि सबसे कठिन कार्य यही है। मर जाओ लेकिन शरण मत लो, हमारा अहंकार कहता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन सिर नहीं झुकाना है, शरण नहीं लेना है, अपने को जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये नहीं लाना, हमारे अपने अपने अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हीनता की भावना, हीनता की भावना नहीं लाना है, कि हम जो है अब झुक गए, अब हम जो है कमज़ोर हैं आपके सामने, हम आपके सामने लज्जित हैं, ये हीनता की भावना नहीं लाना चाहिए। तो ये जो है हमारा अहंकार है ये बोलता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि किसी प्रकार से भी नष्ट नहीं हो सकता है। और प्रभुपाद ने यहाँ ये बताया कि अणु आत्मा है, आत्मा अणु है, कितना छोटा है अणु आत्मा, बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर है, अणु आत्मा है, लेकिन ये बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। कितना आश्चर्य, कितना आश्चर्य, इतना छोटा कण, इतना छोटा कण भी उसी प्रकार बना रहता है, आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य है ना। तो कोई भी छोटा सा कण होता है तो दूसरे कणों से मिलकर के बड़ा कण बन जाता है, और बड़ा बनते बनते बहुत बड़ा पहाड़ भी बन जाता है। छोटे 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 कण मिलकर के एक बहुत बड़ा जो है ढेर बन जाता है, पहाड़ बन जाता है, क्या क्या बन जाता है। ये जो आत्मा है ये कहीं भी किसी जीव के साथ मिलकर के एक नहीं होता है, नहीं तो ऐसा हो जाता कि भाई मैं अपनी आत्मा इनमें मिला दूं और ये शरण लेंगे तो मेरा भी काम हो जाएगा, मुझे अलग से शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इनके साथ में अपनी आत्मा को मिला देता हूँ, ये कर देता हूँ। अब ये करते रहेंगे, अपने शरण लेते रहेंगे, हमको शरण नहीं लेनी पड़ेगी, तो ये नहीं हो सकता है। तो दो आत्माएं मिलकर के भी एक आत्मा नहीं बन सकती हैं, नहीं तो बहुत अच्छा सरल हो जाएगा काम, भाई मुझे कुछ शरण नहीं लेनी पड़ेगी, भाई ये शरण लेंगे, मैंने अपने को इनके साथ मिला दिया, हम दोनों एक आत्मा बन गए, अभी अपना शरण लेते रहें जो कष्ट कर। आपको अलग शरण लेनी पड़ेगी, इनको अलग शरण, सबको अपना अलग अलग शरण लेनी पड़ेगी, है ना। तो हर व्यक्ति को जो है कृष्ण की शरण लेनी, और व्यक्तिगत शरण लेनी है। और कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी एकमात्र शरण लें। तो शरण एक ही की लेनी है, कृष्ण की ही लेनी है, और जितने भी जीव हैं सब, और कृष्ण अकेले हैं और सब जीवों को शरण देने के लिए तैयार हैं, उनके पास बहुत जगह है, शरण देने की बहुत जगह है, अकेले हैं, है? एको बहुनाम जो विदधाति कामान, वो अकेले हैं और बहुतों की कामनाओं को पूरी करते हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रसंग में अद्वैतवाद को विवृत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। अद्वैतवाद जो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये खंडन हो रहा है, अद्वैतवाद का खंडन हो रहा है। अद्वैतवाद का क्या मतलब है कि हम सब आत्माएं एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। उनका ये कहना है कि जितनी भी जीव आत्माएं हैं, ये हम जो है एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है, अपने को अलग अलग समझ रहे हैं। तो ये मेरा ही सपना है कि मैं अपने को ही इतने रूपों में देख रहा हूं, अद्वैत भाव। तो इसमें तर्कों का बहुत जाल बनाया गया है और जबरदस्ती खींचातानी करके ये स्थापित किया जाता है कि आत्माएं सब अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा है, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि एक ही आत्मा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने क्या कहा है कि इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, आत्मा का खंडन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से अद्वैतवाद के सिद्धांत का ही खंडन हो रहा है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता, है ना। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, इतना कर सकते आप। अधिक से अधिक क्या हो सकता है? लोग सोचते हैं हम भगवान के साथ एक हो जाएं, हम भगवान की शरण ना लें और भगवान में ही एक हो जाएं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, अधिक से अधिक क्या हो सकता है कि भगवान की ये तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बन करके आप रहना चाह सकते हैं। मतलब हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे और क्या हो जाएं, हम भगवान की शरण नहीं लेंगे, हम क्या हो जाएं, भगवान में मिल जाएं। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, ये विचार अच्छा है, क्यों भगवान के सामने झुकें और सेवा करें, क्योंकि भौतिक संसार में सेवा करने का अनुभव बड़ा खराब मिलता है। तो इसलिए लोग सोचते हैं भगवान की सेवा में भी उसी प्रकार का जो है हाल होगा और अपनी दुर्दशा होगी। तो भगवान की सेवा ना करें, भगवान में एक हो जाएं, मिल जाएं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि अधिक से अधिक क्या हो सकता है कि आप चाह सकते हैं कि भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है। किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। तो वैकुंठ, आप वैकुंठ के बाहर रहेंगे, आप वैकुंठ के बाहर रहेंगे, आपको शरीर नहीं मिलेगा, आपको शरीर, कोई शरीर नहीं मिलेगा, और आप आध्यात्मिक स्फुलिंग बन करके रहेंगे, ब्रह्म ज्योति में रहेंगे, तो उसमें कोई कार्य नहीं होता है, उसमें कोई सेवा नहीं होती है, उसमें कोई प्रेम नहीं होता है, तो भौतिक कष्टों से तो आप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उस स्थिति में आपको कोई रस नहीं मिलेगा। जो भक्ति के रस होते हैं, दास रस और सख्य रस, मात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये कोई रस नहीं है, नीरस है। तो इस प्रकार से कब तक रहेंगे आप? तो आप चाहते हैं अगर, तो ये हो सकता है, उसको बोलते हैं निर्विशेष मुक्ति, निराकार मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। तो ये सब जो है नाम हैं इस प्रकार की मुक्ति के, लेकिन इनमें क्या है, वो प्रेम नहीं है भगवान के साथ, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु वो बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। तो वैकुंठ लोक में प्रवेश करना भगवान की संगति प्राप्त करना। तो भगवान की सेवा में हमें जो सुख मिलता है वो इस भौतिक संसार से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सेवक को हमेशा अपमानित होना पड़ता है, लेकिन भगवान की सेवा में भगवान अपने सेवक को अपने से ज़्यादा सम्मान देते हैं और भगवान अपने सेवक की सेवा करते हैं। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण अपने सेवक का रथ चलाते हैं, तो ये भौतिक संसार में कभी नहीं होता ऐसा कि कभी जो है मालिक कहे ड्राइवर को कि चलो आज तुम बैठो और मैं गाड़ी चलाता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री कहें अपने ड्राइवर को कि चलो आज तुम जो है गाड़ी में बैठो मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो ये नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा में ऐसा होता है कि जो सेवक होता है तो वो जो है आनंद लेता है भगवान की सेवा, और भगवान उसके सेवक बनते हैं, उसके पुत्र बनते हैं, उसके मित्र बनते हैं, उनके सखा संगी साथी। भगवान जो है, भगवान का जो स्वभाव है वो बिल्कुल उल्टा है इस भौतिक संसार के स्वभाव से, बिल्कुल उल्टा है। तो भगवान की शरण लेने में कितना सुख है और कितना सम्मान है आप सोच नहीं सकते हैं। और जहाँ आप माया की शरण लेते हैं, शरण तो लेनी है माया की शरण, तो वहाँ पर जितना अपमान है, जितनी दुर्दशा है, जितनी पिटाई है ना, उतनी कहीं नहीं मिलेगी। तो माया की शरण आप लेते हैं तो आपकी पिटाई, दुर्दशा, अपमान जितने मिलते हैं उसका कोई सीमा नहीं है। और भगवान की शरण लेने में जितना आपको सम्मान मिलता है, सुख मिलता है, सुविधा मिलती है, तो उतना कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए अगर भगवान से कुछ मांगना है, अगर कभी मौका मिले भगवान से कुछ मांगना है ना, तो क्या मांगना है? सेवा। सेवा के अलावा अगर आपने कुछ भी मांगा भगवान से तो आपका बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा घाटा है। तो सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है भगवान की संगति करने के लिए, वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। वैकुंठ लोक में पता कैसे हैं? भगवान की तरह चार भुजाएं, भगवान की तरह ही चार भुजाएं हैं और संघ चक्र गदा पद्म धारण किए सब चलते हैं भगवान की तरह। कोई नया व्यक्ति जाता है वैकुंठ में तो सोचता है अरे आप तो भगवान हैं, है? वो प्रणाम करता है, कहता नहीं 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 मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। उनकी चेतना यहाँ तो जो है ना बुरी हालत हो रही तो भी अपने को भगवान बोल रहे हैं, है? दांत में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपने को भगवान बोल रहे हैं। और वहाँ पर भगवान जैसे हैं, है? उनकी चेतना कैसी है कि हम भगवान नहीं। तो भगवान जो है उनको मतलब अपने जैसा शरीर देते हैं वैकुंठ में, सब चार भुजाओं के, है ना। और सबका अपना अपना विमान है, इच्छानुसार चलते हैं विमान में, सबके अपने अपने विमान हैं, इच्छानुसार चलते हैं। कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, डीजल पंप नहीं है, वहाँ जो है अपने अपने विमान, इतनी सुविधा। बस केवल अपने को सेवक समझना है भगवान का और बाकी सब आपको अधिकार, सब प्रकार के अधिकार आपके पास हैं और सब प्रकार की सुविधाएं आपके पास हैं। केवल चेतना आपकी क्या है कि मैं सेवक हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। और हम भगवान की तरह रहते हैं लेकिन समझना क्या है कि मैं भगवान नहीं हूँ। और यहाँ पर मूर्ख लोग भगवान समझते हैं अपने को और रहते हैं कैसे, कुत्ते जैसा जीवन है, बुरी हालत। तो ये अंतर है, आपकी केवल भावना है सेवा की, बाकी और क्या है। भगवान को किसी सेवा की जरूरत नहीं, आपके अंदर सेवा की भावना केवल होनी चाहिए कि मैं सेवक हूँ, इतना ही है और बाकी आपको पूरा सम्मान, पूरी सुविधा, पूरा अधिकार, सब प्रकार का स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता है। तो ये जो है अंतर है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। ये वैकुंठ का जो है कुछ नमूना, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। सर्वगत का ये मतलब नहीं है सर्वव्यापी, जैसे इसमें शब्दार्थ में लिखा है सर्वगत सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी का मतलब कोई सोचे कि जो जीवात्मा है ये सर्वव्यापी है, जैसे हवा या आकाश, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना छोटा कण है तो वो जो है सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। छोटा बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर छोटा सा जो कण है तो वो उसको आप सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं। वो तो 1 मिलीमीटर के अंदर भी जो है करोड़ों जीव आ जाएंगे, इतने छोटे, इतना छोटा अंश है। बाल की नोक में भी जो है 10,000 अगर जीव आ जाएंगे तो 1 मिलीमीटर में तो कितने आएंगे, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। वह सर्वव्यापी प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस तरह से है कि सर्वगत का मतलब है जीव भगवान के समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं, पूरी सृष्टि में फैले हैं जीव है? वे जल में, थल में, वायु में, पृथ्वी के भीतर और अग्नि के भीतर भी रहते हैं। ये मतलब है सर्वगत का, मतलब क्या हुआ, हर स्थानों में गया हुआ। गत का मतलब गया हुआ भी है, तो आप हर स्थान में जा चुके हैं इस भौतिक सृष्टि के हर स्थान। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, तो ब्रह्मांड भर में आप भ्रमण कर चुके हैं है? आपकी कोई डेट ऐसी नहीं है इतिहास में कि आप कब गिरे वैकुंठ से और आपने कितने जन्म लिए और कहां कहां आप गए, इतना आपका समय बीत चुका है कि आप हर जगह हो चुके हैं। आप 84 लाख योनियों में, सब योनियों में जा चुके हैं और भ्रमण कर रहे हैं। तो सर्वगत का मतलब ये है, सर्वगत का ये मतलब नहीं है कि इतना बड़ा हो कि भाई सब जगह ये फैल जाए। तो सर्वगत यहाँ पर ऊपर कहते हैं, सर्वगत का अर्थ है ये कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो इस श्लोक से भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि सर्वगत ये शब्द, इस शब्द से भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि अब हम जो है हर जगह जा चुके हैं लेकिन कहीं भी हमें स्थान नहीं मिला जहाँ हम रह सकें। सर्वगत का मतलब क्या हुआ, आप सब स्थानों में जा चुके हैं, सब योनि में जा चुके हैं लेकिन कहीं भी आपको एक जगह ऐसी नहीं मिली जहां आप रह सकें, और मृत्यु की ठोकर से आपको हर जगह से निकाला जाता है। आप सर्वगत हैं मतलब सब जगह जा चुके हैं और मृत्यु की ठोकर हर जगह लगती है। कभी छिपकली के शरीर में जाते हैं फिर मृत्यु की ठोकर लगती है तो कछुए के शरीर में जाते हैं, फिर उस फिर ठोकर लगती है तो मेंढक के शरीर में जाते हैं, फिर ठोकर लगती है सांप के शरीर में जाते हैं, फिर ठोकर लगती है मच्छर के शरीर में जाते हैं, सर्वगत। तो इतना आप भटक रहे हैं तो हम अब जो है ये स्थिति छोड़ना चाहते हैं, सर्वगत की स्थिति छोड़ना चाहते हैं और एक गत हम चाहते हैं वैकुंठगत हो जाएं। यद गत्वाना निवर्तन्ते तद धाम करो, वैकुंठ में जाएंगे अगर वैकुंठगत हो जाएं, हैं एकमात्र वैकुंठगत हो जाएं तो आप वापस नहीं आएंगे, और नहीं तो स्वर्गगत आप जाते होते हैं, यानी स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्गगत हो गए तो छीने पुण्य मरते लोकम विशंति, स्वर्ग से फिर आपको नीचे आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर के जितने भी लोक हैं पुनरावर्ती, आप रह नहीं पाएंगे, आपको मौत की ठोकर लगेगी और आप फिर गिरेंगे। हर जगह मृत्यु की ठोकर लगती है। तो सर्वगत का मतलब क्या है, हर जगह आप जा चुके हैं, हैं? आप क्या हो गए हैं, मच्छरगत हुए, छिपकलीगत हुए, मेढकगत हुए, कुत्तागत हुए, सर्वगत सब जगह आप जा चुके हैं, हैं? और कहीं ठहर नहीं पाए, हर जगह मृत्यु की ठोकर लगती है। अब कहाँ जाना है हमको, हमको वैकुंठगत होना है ना, तो भगवान की शरण लो और जाओ वैकुंठ जाओ, फिर वहाँ से वापस नहीं आओ, और वहाँ पर आपका शरीर भी मिलेगा, आत्मा की तरह शरीर मिलेगा, है यथा आत्मा तथा शरीर, तो शरीर में भी आत्मा की तरह बुढ़ापा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, है ऐसा शरीर मिलेगा, ऐसा विमान भी मिलेगा, है जिसकी कभी रिपेयर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वहाँ पर कोई वर्कशॉप नहीं है, गैरेज नहीं है जहाँ की सब रिपेयर हो, पार्ट जो है ख़राब होते हैं, तो विमान कभी जो है कोई पार्ट ख़राब नहीं होगा, हाँ तो इस तरह से आपको जो है शरीर मिलेगा, आपको विमान मिलेगा, आपको जो है सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन केवल चेतना आपको बनानी है क्या कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, दास, केवल दास समझना है और आप बन जाते हैं क्या, भगवान से भी बढ़कर के बन जाते हैं, और यहाँ आप भगवान समझते हैं और कितनी बुरी हालत होती है, कुत्ते सुअर बिल्ली और नरक की कितनी यातनाएं वो सब भोगते हैं, और वो सोचता है कि मैं भगवान हूँ, ठीक है ना, इसलिए भगवान बनने की कोशिश मत करो और अपने को नष्ट करने की भी कोशिश मत करो। तो कुछ लोग भगवान बनने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग अपने को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप नष्ट भी नहीं हो सकते, आप भगवान भी नहीं बन सकते, एक ही उपाय है, नान्या पंथा विद्यते नाय, अन्य रास्ता है ही नहीं, तमे विदित्वाति मृत्यु में थी, उनको जान करके आप मृत्यु से छूट जाओ, हैं और जो है उनके साथ रहो, उनकी संगति में रहो, उनके समान बन करके रहो, उनसे बढ़ करके रहो, उनसे भी बड़े बन करके रहो, वे आपको अपने से बड़ा बनाए, अगर शरण लोगे, आप अपने को छोटा समझो तो वो आपको अपने से बड़ा बनाएंगे, आप अपने को छोटा समझते हैं तो भगवान आप अपने को छोटा समझते हैं। और आप अपने को भगवान समझते हैं तो फिर जो है आप कहीं भी आपको शरण नहीं मिली, कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, केवल आप अपने को समझिए कि मैं दास हूँ, ठीक है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, जब मैं प्रश्न करूँ, हाँ जी, हैंड माइक नहीं है, जोर से बोलिए।
आपने बहुत अच्छा समझाया कि शंकराचार्य का जो सिद्धांत है कि जो पहले आप जो है बातें जाएंगे भगवान में, बोले तो इसके ऊपर और आप कुछ बता सकते हैं, रूपा जी अपने शिष्यों को जान करके बोलते थे कि मायावाद का सिद्धांत बताओ, मैं इसका खंडन करूँगा।
वैष्णव अगर आपको बनना है तो आपको मायावाद सिद्धांत से नफरत करना है और उसका खंडन करना है, तभी आप वैष्णव बन सकते हैं। इसलिए चार वैष्णव संप्रदाय हैं, एक मायावादी संप्रदाय है और चार वैष्णव संप्रदाय हैं, और चारों वैष्णव संप्रदाय मायावादी संप्रदाय का खंडन करते हैं, क्योंकि मायावादी कृष्ण अपराधी। तो अगर आप इसका खंडन नहीं करते, मायावाद का खंडन नहीं करते हैं, तो आप अपराधी हैं, क्योंकि मायावाद फैला हुआ है। चूंकि मायावाद फैला हुआ है और हर जगह यही सिद्धांत देखने को मिलता है, तो आपको ये इसका इस सिद्धांत का खंडन करना है ना। इसलिए प्रभुपाद भी खंडन करते हैं, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी खंडन करते थे उनके गुरु महाराज, तो हमारी परंपरा ही है ना। तो ये नहीं सोचना कि हमें निंदा नहीं करना चाहिए, कोई निंदनीय है। अगर कार्य होता है और आप निंदा नहीं करते हैं तो आपकी भी निंदा होगी, तो आप भी निंदनीय हो जाएंगे, ठीक है ना।
जैसे कि तो लोग उदाहरण देते हैं हमेशा, लोगों को बहुत अच्छा लगता है सामान्य लोगों को, कि जैसे मानव सेवा, माधव सेवा, मनुष्य की सेवा करो और अस्पताल खुलाओ, मंदिर क्यों जाते हो, मंदिर में तो क्या मिलेगा, मंदिर की जगह पर तुम अगर किसी की मदद करोगे गरीब आदमी की तो ज़्यादा सफल होगा।
हाँ, इस तरह के विचार बहुत फैल रहे हैं, नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा। तो कुछ हद तक सही है, नर सेवा, नारायण सेवा भी कह सकते हैं, सही है। लेकिन नर का अर्थ क्या है, नर का अर्थ क्या है, जो नारायण की शरण ले, जो नारायण की शरण ली तभी वो असली मनुष्य, नहीं तो पशु है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है। तो आप किन की सेवा कर रहे हैं, आप पशु की सेवा कर रहे हैं या मनुष्य की सेवा कर रहे हैं, जिनका धर्म ही नहीं है। और धर्म का मतलब क्या है, मामेकम शरणम रत, कृष्ण की शरण लेना। तो जो कृष्ण की शरण नहीं ले रहे हैं तो वे मनुष्य तो है ही नहीं। अब आप मानव सेवा, माधव सेवा आप कैसे बोल सकते हैं, असली मनुष्य वही है जो माधव की शरण ले, तो उनकी आप सेवा करिए। तो ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, इसमें हम सिखाते हैं भगवान की शरण लेना, तो वो मनुष्य है, तो उनकी सेवा करना माधव सेवा कही जा सकती है। मानव जो मनु की संतान है, जो मनु के सिद्धांत का पालन करे, जो मनु की शिक्षाओं का पालन करे, वो मानव है। और मनु महाजन है, बहुत बड़े भक्त हैं, उनकी शिक्षा यही है कि भगवान की शरण लो, तभी आप मानव बन सकते हैं। तो मानव सेवा, माधव सेवा है, सही है, लेकिन मानव, असली मानव क्या है, जो शुद्ध वैष्णव है वही असली मानव। आप कितने मनुष्य बने हैं, आप जो है 1% मनुष्य हैं या 2% मनुष्य हैं, आप कितने परसेंट शरण ले रहे हैं कृष्ण की, उतने परसेंट आप मनुष्य हैं, तो उतनी परसेंट हम आपकी सेवा कर सकते हैं। फिर हमें पहले देखना है कि कितने परसेंट आप मनुष्य हैं। आप 100% मनुष्य हैं तो 100% आपकी हम सेवा करेंगे और भगवान की सेवा 100% हो जाएगी। इन 0% आप तो भगवान को मानते नहीं हैं, आप इंद्रिय तृप्ति का आपका जीवन लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति, तो आप मनुष्य तो है नहीं, तो आप तो पशु हैं, फिर कैसे माधव सेवा होगी, आप समझ रहे हैं। तो जितनी आप भगवान की सेवा करते हैं, जितनी आप शरण लेते हैं, उतने आप मनुष्य बनते हैं, हैं? और हम आपकी सेवा करें तो सही है, नर सेवा, नारायण सेवा सही है, लेकिन जब कोई मनुष्य बनने के लिए तैयार हो तब तो। मनुष्य का जीवन मिला है लेकिन मनुष्य आप नहीं है। आपको मनुष्य का जीवन मिल गया है और बहुत अच्छा अवसर मिला है मनुष्य बनने का, या मनुष्य नहीं बन रहे हैं, मनुष्य के जीवन में आप मनुष्य नहीं बन रहे हैं, तो आपको मनुष्य का जीवन दोबारा मिलेगा नहीं। आपको मनुष्य बनने का अवसर मिला लेकिन आप मनुष्य नहीं बनना चाहते हैं, तो आपको मनुष्य का जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। और जो लोग ऐसे लोगों की सेवा करते हैं उनको भी मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, वो भी जाएंगे पशु पक्षी 84 लाख जोड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से वो जो है वो भगवान की सेवा नहीं होती है, यही माया है, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की श्री श्री गौरताय जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की। बैठिए बैठिए।
आपने देखा प्रभु ने अति सुंदर शिक्षा प्रद तथा प्रेरणाप्रद संदेश का हमारे सामने उद्घाटन किया, और विशेषकर आत्मा के बारे में जो इतना विस्तार से क्योंकि हमने हमको कभी सुनने का नहीं मिलता, तय गूढ़ रहस्य प्रभु ने हमें सामने रखा, जिससे काफी कुछ हमें आत्मा के बारे में हम तो बराबर सुनते रहते हैं, रोज सुनते रहते हैं, लेकिन इतना डिटेल प्रभु ने केवल कृपा जी के तत्वों में और अपने साक्षात्कार के बल पर प्रस्तुत किया। अभी मेन जो रहस्य था पुस्तक जो प्रभु जी ने अपने सामने रखी थी, जिसमें पीछे मैंने चर्चा किया था, लगभग इसी श्लोक पर जो प्रभु जी ने हमें सामने रखा उसी पर करीब करीब 12-13 पेज में व्याख्या है, लेकिन कभी ने उससे पढ़कर भी कुछ नहीं बताया उतना, मतलब उसमें कथा रूप में प्रस्तुतिकरण है कि आप पढ़ेंगे तो और ज्यादा उजागर हो जाएगा कि वास्तव में आत्मा का क्या मतलब लक्षण है और क्या मतलब रहस्य आत्मा का, जो कि हृदय में है हमारे शरीर के अंदर ही हम जानते नहीं, एकदम प्रभु ने उसको एकदम फोन करके रख दिया है, भले बड़े ही सरल भाषा में। प्लीज यदि आप सब में से किसी के पास पुस्तक नहीं है, जैसे पीछे मैंने बताया था, क्या नाम उसका, श्री भगवान ने कहा, इन गीता के श्लोकों पर 12-15 प्लेस की व्याख्याएं हैं, जिसके पास नहीं हो तो अभी भी अवेलेबल है, कोई लेना चाहे ड्यूटी भी अवेलेबल है प्रभु जी, या मेरे से भी दे सकते हैं। तो ऐसे सुंदर संदेश की प्रभु जी को हम हृदय से और हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के माध्यम से धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी की जय। तो प्लीज